आत्मा में चलना। गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 16 से 23 और अध्याय 6 वचन 6 से 18। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। पर यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लाल क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। क्योंकि खतना करवाने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। हमें पवित्र आत्मा में चलने के लिए क्या करना चाहिए? हमें खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार और अनुसरण करना है। प्रेरित पौलुस ने गलतियों की अपनी पत्री में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 13 से 14 में लिखा है कि भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। संक्षेप में संदेह यह है कि जब से हम सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं और हमारे पाप से मुक्त हुए हैं, तो फिर हमें इस स्वतंत्रता को दैहिक वासना में पड़ने का मौका नहीं बनाना है, लेकिन प्रेम से हमें एक दूसरों की सेवा करनी चाहिए और खूबसूरत सुसमाचार का अनुसरण करना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है तो हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। पौलुस ने भी कहा है गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 15 में, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न करो। पवित्र आत्मा से भरने के लिए आत्मा में चले। गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 16 में पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। और वचन 22 से 26 में वह कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। यहां पौलुस हमें कहता है कि यदि हम आत्मा में चले तो हम आत्मा के फल लाएंगे। आत्मा में चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, लेकिन हम शरीर में भी जी रहे हैं। हम मनुष्य जाति शरीर के साथ जन्मे हैं, जो कभी भी आत्मा के फल नहीं दे सकता। यहां तक कि यदि हम आत्मा में चलने की कोशिश करें, हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता। इसीलिए केवल जिन्होंने खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है, वे ही आत्मा में चल सकते हैं और आत्मा के फल दे सकते हैं। जब बाइबल हमें आत्मा में चलने के लिए कहता है, इसका मतलब है कि हमें खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों के पाप माफ हो सके। यदि हम इस खूबसूरत सुसमाचार के लिए जी रहे हैं तो हम आत्मा के फल लाएंगे। दूसरे शब्दों में, यह मनुष्य के स्वभाव को बदलने की बात नहीं है। अब हम इस खूबसूरत सुसमाचार के साथ चलते हैं, हम पवित्र आत्मा के फल लाते हैं, जैसे कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा के फल दूसरों को उनके पापों से बचाने में और उन्हें अनंत जीवन पाने में हमारी मदद करता है। दैहिक वासना बनाम आत्मा की इच्छा। पौलुस कहता है गलातियों की पत्री अध्याय 5:17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। जब से हम जिन्होंने छुटकारा पाया है, तब से दैहिक वासना और आत्मा साथ में धारण किया है। यह दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ में है। परिणाम स्वरूप दोनों में से कोई भी हमारे दिल को पूरी रीति से नहीं भर सकते। आत्मा हमें हमारे दिल की गहराई से खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार और प्रभु की सेवा के लिए अगुवाई करता है। वह हमें आत्मिक कार्यों में जुड़ने के लिए उत्सुक बनाता है। यह हमें परमेश्वर का खूबसूरत सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा दूसरों को बचाने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी इच्छा दैहिक वासनाओं को उत्तेजित कराती है और जिससे हम आत्मा में चल सके। यह आत्मा और दैहिक पाप के बीच में अनंत लड़ाई है। जब कोई व्यक्ति दैहिक वासना से भर जाता है, तब वह देह के लिए प्रतिबंध करने के द्वारा अनंत बाबत करता है। देह आत्मा के विरुद्ध अपनी इच्छा बनाता है। वह एक दूसरे के खिलाफ में है, इसलिए हम वो कार्य नहीं करते जो हम चाहते हैं। तो फिर आत्मा में चलने के लिए क्या जरूरी है और किस प्रकार की चीजें परमेश्वर को प्रसन्न करती है? परमेश्वर कहता है कि खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार और अनुसरण करना आत्मा में चलना है। जिनके पास पवित्र आत्मा का अंतर निवास है, उनको परमेश्वर का आत्मा में चलने का हृदय होता है, जिसने वे आत्मिक जीवन की अगुवाई कर सके। आत्मा में चलने के द्वारा आत्मा के फल लाने की आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी थी, वह खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करके दूसरों को बचाने के लिए हमारे लिए परामर्श और आदेश था। पवित्र आत्मा में चलने का मतलब है ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। आत्मा में चलने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अंतर निवास होना चाहिए। यदि हम पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं जो हमारे अंदर रहता है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर ने दिया हुआ खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि हम अपने दिल की गहराई से खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम ना तो पवित्र आत्मा का अंतर निवास पा सकते हैं और ना तो पाप से उद्धार पा सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम आत्मा में चलने के लिए सक्षम नहीं बनेंगे। आत्मा हमें खूबसूरत सुसमाचार पर प्रचार करने की, प्रभु की सेवा करने की और परमेश्वर की महिमा करने की इच्छा देता है। यह इच्छा ऐसे हृदय से आती है जो परमेश्वर के प्रति और जगत में खूबसूरत सुसमाचार प्रचार करने के लिए समर्पित हो। यह ऐसे हृदय से भी आती है जो किसी भी कीमत पर खूबसूरत सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार है। जो लोग खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करते हैं और अपने पापों की माफी पाने के बाद पवित्र आत्मा पाया है, वह आत्मा में चलने के लिए और खुद को सुसमाचार प्रचार करने के लिए समर्पित करने के लिए सक्षम बनता है। यह ऊपर से उसके लिए आत्मिक विरासत है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अंतर निवास होता है, वे पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करते हैं और आत्मा में चलते हैं, भले ही उनके अंदर दैहिक वासना क्यों ना हो, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर बसता है। पौलुस ने कहा आत्मा में चलो। यह कहने का उसका मतलब था कि हमें पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करना है जो यीशु ने हमें दिया है, जिससे हम दूसरों को उनके पाप माफ होने के लिए मदद कर सके। कभी कभी आत्मा में चलते समय हम देह के मुताबिक चलते हैं। दैहिक वासना और पवित्र आत्मा की इच्छा हमारे जीवन में युद्ध करते हैं, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से जो जानने की और पहचानने की जरूरत है वो यह है कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अंतर निवास है वे आत्मा के अनुसार चलने का जीवन जीते हैं। केवल इसी तरीके से हम परमेश्वर की आशीषों से भरा जीवन जीने के लिए सक्षम बनते हैं। यदि जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाया है वे लोग आत्मा के फल देने से इनकार कर दे तो वह देह के पाप देने के द्वारा नाश होंगे। उनके फल नाशवंत और तुच्छ है। यहां हमारे लिए पवित्र आत्मा में चलने के लिए एक कारण है। हमने सुना कि आत्मा में चलो, लेकिन हम में से कुछ लोग शायद ऐसा सोचेंगे, जब मैं खुद के अंदर पवित्र आत्मा को महसूस नहीं करता हूं तो मैं यह कैसे कर सकता हूं। हम में से कुछ लोग सोचेंगे कि यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हमारे पास आकर बता करता है तभी हम पवित्र आत्मा का अंतर निवास पहचान सकते हैं, लेकिन यह गलत फहमी है। पवित्र आत्मा हमें पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार के लिए जीवन जीने की इच्छा देता है। शायद कभी ऐसा भी होगा कि हमें निश्चित होगा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको एहसास नहीं कर पाएंगे क्योंकि देह के मुताबिक हम चलते हैं। कुछ लोग शायद यह भी सोचेंगे कि वह हमारे अंदर सो रहा है। वे वह लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त तो कर लिया है लेकिन अभी भी देह में चल रहे हैं। यह लोग केवल अपनी देह को ही आराम देते हैं और ऐसा कार्य करते हैं और यह देव की बढ़ाती आवश्यकताओं के कारण अंत में नाश हो जाते हैं। यहां तक कि जिसने पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाया है वे भी दैहिक वासनाओं के अनुसार जीवन जीते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा करना स्वाभाविक है, लेकिन जो देह के आदीन है वे देह के गुलाम बन जाते हैं। प्रभु हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीने की बात करते हैं। इसका मतलब है खूबसूरत सुसमाचार की सेवा करना। इसका यह मतलब भी होता है कि हमें हमारा संपूर्ण जीवन पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार के अधीन करना चाहिए। सुसमाचार में आनंदित होना और इसके द्वारा जीवन जीना आत्मा में चलना है। आत्मा में चलना क्यों, यह सीखने के द्वारा हमें कैसे जीवन जीना है। क्या आप आत्मा में चलते हैं? क्या जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास नहीं है वह आत्मा में चल सकता है? जिसका नया जन्म नहीं हुआ है वे आत्मा में चलना क्या है वह नहीं जानता। इस तरह कई लोग अपने तरीके से पवित्र आत्मा पाने की कोशिश करते हैं। वैसा सोचते हैं कि पवित्र आत्मा पाने की इच्छा और पवित्र आत्मा से भर जाना दोनों ही एक समान है। उदाहरण स्वरूप, जब लोग सभा के लिए आराधनालय में जाते हैं तब सेवक जोर से प्रार्थना करना शुरू करता है और लोग भी प्रभु का नाम लेने लगते हैं। कई लोग अन्य भाषा में बोलते हैं जैसे कि वे पवित्र आत्मा से भर गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं, यहां तक कि वे खुद भी नहीं जानते कि वे क्या बोल रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग जमीन पर गिर जाते हैं और उनके शरीर आनंद से हिलने लगते हैं। वास्तव में वे दुष्टता से ग्रसित होते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। उसके बाद बड़ा हंगामा होता है जब लोग चिल्लाते हैं, प्रभु प्रभु। वे प्रभु का नाम लेते हैं, आंसू बहाते हैं और अपने हाथों से तालियां बजाते हैं। इस घटना को पवित्र आत्मा से भर जाना कहते हैं। सेवक वेदी के पास खड़ा होकर जोर जोर से अन्य भाषा में बोलता है और लोग भी जोर से प्रभु प्रभु चिल्लाते हैं। उनको इस तरह का माहौल पसंद है और कुछ लोग तो कहते हैं कि जब वे बेहोश थे तब उन्होंने दर्शन में एक एदन वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ और यीशु का चेहरा देखा। वे इस मिथ्या विचार को पवित्र आत्मा पाने का, उससे भर जाने का और उससे बात करने का तरीका समझते हैं। परमेश्वर और पवित्र आत्मा के बारे में उनके मिथ्या विचार उनके गलत कार्यों का परिणाम है। आत्मा में चलो, परमेश्वर नया जन्म पाए हुए लोगों को यह कहता है। इसका मतलब है कि उसे प्रसन्न करने वाले कार्यों को करना। पौलुस देह के कार्यों को पवित्र आत्मा के फलों के साथ तुलना करता है। उसने कहा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा में चलने का मतलब है खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करना और दूसरों को उनके पापों से बचाना। यदि हम ऐसा करते हैं तब हम आत्मा के फल देने के लिए सक्षम बनते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आत्मा के फल है और हम आत्मा के यह फल केवल तभी दे सकते हैं जब हम खूबसूरत सुसमाचार के द्वारा जीवन जिए। यदि कोई व्यक्ति खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करता है इसके लिए खुद को बलिदान करना है तो वह पवित्र आत्मा से भरा आत्मिक जीवन जी सकता है। आत्मा के फल की तरह भलाई का मतलब है अच्छे कार्यों को करना। इसका मतलब सदाचार भी है। खूबसूरत सुसमाचार के लिए सदाचार को बनाए रखना और दूसरों के फायदे के लिए कुछ करना भलाई है। परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ी भलाई दूसरों के फायदे के लिए सुसमाचार का प्रचार करना। और कृपा का मतलब है लोगों के लिए तरस से भर जाना। जो दूसरों के प्रति दयालु है वह सुसमाचार की धीरज और कृपा से सेवा करता है और शांति स्थापित करता है। जो आत्मा में चलता है वह प्रभु के कार्य को पूरा होते हुए देखकर खुश होता है, उसका कार्य करना अच्छा लगता है, दूसरों को प्रेम करता है और हर बात में वह विश्वास योग्य रहता है। हालांकि कोई भी उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता, फिर भी जिसके पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है वह काम पूरे होने तक विश्वास योग्य रहता है। वह नम्र है और संयम को बनाए रखता है, उसके अंदर आत्मा के फल है। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है वह आत्मा में चलता है। यदि वह ऐसा करता है केवल तभी वह पवित्र आत्मा के फल दे सकता है। यदि आप आत्मा में चले तो आप भी पवित्र आत्मा के फल दे सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं चलते तो आप दैहिक वासनाओं के साथ चलेंगे। गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से 21 में वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देह के कार्य स्पष्ट है। देह के कार्य, सबसे पहला कार्य व्यभिचार है, जिसका मतलब है विपरीत लिंग के साथ अनैतिक संबंध रखना। दूसरा है गंदे काम, तीसरा है लुचपन, चौथा है लीला क्रीड़ा, जिसका मतलब है वासना से भरा हुआ। पांचवा है मूर्ति पूजा, जिसका मतलब है परमेश्वर को छोड़ मूर्ति की सेवा करना। छठवा है टोना। सातवा है बैर। यदि व्यक्ति पवित्र आत्मा के बगैर देह के अनुसार चले तो वह केवल अपने पापी स्वभाव के अनुसार दूसरों के प्रति बैर रखेगा। आठवा है झगड़ा, इसका मतलब है हमारे मित्र या परिवार के साथ झगड़ा करना। दूसरे हैं ईर्ष्या, क्रोध और विरोध। यह सब देह से चलने वाले व्यक्ति के गुण है। दसवां है विरोध। जब व्यक्ति केवल अपने देह के अनुसार चलता है तो उसके लिए कलिशया के कार्य करना असंभव हो जाता है और धीरे धीरे वह अपनी इच्छाओं से कलिशया को छोड़ देगा। ग्यारहवां है विधर्म। जो देह में चलता है वह अपनी इच्छा को पूरा करता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से जीवन बिल्कुल अलग है और वह धीरे धीरे खूबसूरत सुसमाचार से दूर चला जाता है। विधर्म का मतलब है बाइबल के सत्य से अलग हो जाना। जो कोई भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और आत्मा में चलता है वह कभी भी परमेश्वर की इच्छा से दूर नहीं होगा। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे सभी देह के कार्य है। जो केवल देह के काम के अनुसार चलता है वह अंत में ये सारी चीज करता है। इसलिए प्रभु ने कहा है आत्मा में चलो। हम जो नया जन्म पाए हुए हैं उन्हें आत्मा में चलना चाहिए। जो लोग नया जन्म नहीं पाए हैं उनके हृदय में केवल दैहिक वासना है, इसलिए वे लुचपन, गंदे काम, लीला क्रीड़ा और मूर्ति पूजा में हिस्सा लेते हैं। झूठे सेवक जिन्होंने नया जीवन नहीं पाया है वे अपने अनुयायियों से ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए उन पर टोने का प्रयोग करते हैं। वे उन लोगों को कलीसिया में महत्व के और सच्चे पद पर जो ज्यादा पैसे देते हैं उनको रख देते हैं। जो लोग देह के अनुसार चलते हैं वे दूसरों के प्रति बैर रखते हैं। उन्होंने कलीसियाओं को अनेक पंथों में विभाजित कर दी है। वे अपने पंथ पर अभिमान करते हैं और दूसरों के पंथ को झूठ समझते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और डाह उनके हृदयों में होता है जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया। यदि हम केवल देह के मुताबिक चलेंगे तो हम संतों के साथ भी ऐसा ही होगा। आत्मा नया जन्म पाए हुए लोगों में पवित्र आत्मा के फल लाता है। जिन्होंने नया जन्म पाया है उन्हें खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जीवन जीना चाहिए। जैसे कि हमारे लिए अकेले प्रभु का अनुसरण करना बहुत ही कठिन है, इसलिए हमें खूबसूरत सुसमाचार की सेवा का कार्य परमेश्वर की कलीसिया के साथ मिलकर करना चाहिए। हमें साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी ऊर्जा ऐसे व्यक्ति बनने के लिए खर्च करनी चाहिए जो आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार के अनुसार चलता हो। जो लोग आत्मा में चलते हैं वे पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जीवन जीते हैं। दूसरे शब्दों में देह अनुसार चलने का मतलब है केवल खुद के लिए जीवन जीना और आत्मा में चलने का मतलब है दूसरों की आत्मा बचाने के लिए कार्य करना। कई सारे मसीही इस तरह का खूबसूरत जीवन जीते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए जीवन को खर्च कर देते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खूबसूरत सुसमाचार को नहीं सुना है। हम अफ्रीका और एशिया के लोगों को प्रेम करते हैं, हम यूरोप और अमेरिका और दूर दरार के द्वीपों को भी प्रेम करते हैं। हमें पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार की पहचान कराकर उनको हमारा प्रेम दिखाना चाहिए। हमें आत्मा में चलना चाहिए, इसके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 22 और 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। क्या कोई व्यवस्था है जो इसके विरोध में हो? नहीं, यह आत्मा की व्यवस्था है जिसका हमें पालन करना है। पौलुस हमें आत्मा में चलने के लिए कहता है। जैसे हमारे प्रभु ने अपना जीवन हम पापियों के लिए दिया, हमें दूसरे लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। दूसरों को उनके पापों से बचाना आत्मा में चलना है। हमें आत्मा में चलना चाहिए। गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 24 से 26 में पौलुस ने कहा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। यदि हम आत्मा में जीवन जीना चाहते हैं तो हमें खोई हुई आत्माओं को बचाने के लिए जीना पड़ेगा। हमें आत्मा के कार्य करना चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है वह हमें हमारे हृदय में यीशु के साथ जीने के लिए अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा सबके ऊपर राजा है। परमेश्वर हमें अपने प्रेम के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पौलुस ने कहा, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। उसने यह भी कहा है कि जो लोग नया जन्म पाए हुए हैं वे यीशु मसीह के साथ मर चुके हैं। हम इस बात को नहीं समझते, लेकिन जब हम हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए मारा तब हम भी उसके साथ मर गए थे। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया उसका मतलब है आप और मैं क्रूस पर उनके साथ मर गए। हमारे अंदर विश्वास की जरूरत है। हमारा विश्वास आत्मा में चलने के लिए हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर ने हमें आत्मा में चलने के लिए सामर्थ्य दिया है, इसलिए हम जिनके पाप माफ किए गए हैं उन्हें आत्मा में चलना चाहिए। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उनके पाप माफ किए गए हैं, और खोई हुई आत्माओं के उद्धार के लिए खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। हालांकि कोई व्यक्ति अपने पापों से माफी पा चुका है, लेकिन यदि फिर भी वह दैविक वासनाओं के मुताबिक जीवन जीता है तो वह प्रभु की कलीसिया से अलग हो जाएगा और उसकी सेवा नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के दिन तक आपको और मुझे पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा जीवन जीना चाहिए। कभी भी दम्भी मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा जीवन जियो। पौलुस ने कहा, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। घमंड क्या है? यह देह की वासना के अनुसार चलना है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने खुद के घमंड के लिए जीवन जीते हैं। कई लोग पैसे बटोरते हैं, श्रेष्ठता की और इच्छा रखते हैं, सांसारिक सुंदरता को प्रेम करते हैं और यहां अभी के लिए जीते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और जैसे समय जाएगा वैसे यह सब कुछ गायब हो जाएगा। इसलिए जो लोग देह के अनुसार चलते हैं उन्हें घमंडी कहा गया है। यदि मनुष्य के पास समृद्धि हो तो क्या उसके दिल में शांति और संतुष्टि उससे आ सकती है? देह के फल धीरे धीरे नाश हो जाते हैं। सांसारिक चीजें दूसरों की भलाई के लिए नहीं होती, यह केवल खुद के लिए होती है। वह केवल व्यक्ति की खुद की देह के लिए होती है। बाइबल कहती है नीति वचन अध्याय 11 वचन 24, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती हो जाती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इनसे उनकी घटती ही होती है। जो लोग नया जन्म नहीं पाए वे पैसे को बचा के रखते हैं, क्योंकि सांसारिक चीजें उनके लिए सब कुछ है। उनके अंदर दूसरों का ख्याल रखने की कोई बात नहीं होती, इसीलिए वे केवल अपने खुद की चिंता करते हैं। लेकिन बाइबल में कहा गया है कि ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। व्यक्ति देह की वासनाओं के अनुसार चलता है, लेकिन उसका परिणाम चोर आकर चोरी कर जाता है और उसे मार देता है। यह सारा परिणाम घमंड की वजह से आता है। वे जिन्हें आत्मा की इच्छा का अनुसरण करना अच्छा लगता है। पौलुस आत्मा के अनुसार जीवन जीना चाहता था। उसने हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन जीने के बारे में सिखाया है। उसने गलतियों अध्याय 6 वचन 6 से 10 में कहा, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भी भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। पौलुस ने उन लोगों को राय दी है जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, और कहा है कि सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करें। सब अच्छी वस्तु का मतलब है कि आत्मा में चलने और सुसमाचार का प्रचार करके खोई हुई आत्मा को बचाकर नया जीवन जीने से परमेश्वर को प्रसन्न करना। जो लोग नया जन्म पा चुके हैं उन्हें जो लोग आत्मा में चलते हैं और सिखाते हैं उनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके विचार प्रेम और न्याय एक जैसे ही होते हैं। सब वस्तु में सिखाने वाले को भागी करें। अच्छी वस्तु का मतलब है कि कलीसिया के द्वारा दूसरों को उनके पापों से बचाना। पौलुस ने हमें सब कुछ एक मन, एक प्रार्थना और एक मनन के साथ करने के लिए कहा है। हमें प्रभु का कार्य साथ में मिलकर करना चाहिए। पौलुस ने कहा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहां ठट्ठों में उड़ाना का मतलब है हंसी उड़ाना और तिरस्कार करना, मतलब परमेश्वर की हंसी मत उड़ाओ और उसका तिरस्कार मत करो। किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के वचनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वचन का खुद के लिए अनुसार विश्लेषण नहीं करना चाहिए, उसे तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पौलुस कहता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसका मतलब है कि जो देह को बोता है वह भ्रष्टाचार काटेगा, लेकिन जो आत्मा को बोता है वह अनंत जीवन को काटेगा। यदि हम पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार को बोएंगे तो हम क्या काटेंगे? हम अनंत जीवन और हमारे पापों से उद्धार प्राप्त करेंगे। हम दूसरों के पापों के छुटकारे के लिए और परमेश्वर की आशीष के द्वारा अनंत जीवन से दूसरों की आत्माओं की अगुवाई करके आत्मा के फल काटेंगे। लेकिन जो लोग अपनी देह के अनुसार जीवन जीते हैं उनके बारे में क्या? वे लोग भ्रष्टाचार काटेंगे और अंत में उनकी मौत होगी। उनकी मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। मनुष्य खाली हाथ जन्म लेता है और खाली हाथ मर जाता है। यदि वह दूसरों को उनके पापों से बचाने का कार्य करे तो वे आत्मा के फल काटेंगे और अनंत जीवन पाएंगे, लेकिन यदि वे देह की वासनाओं के अनुसार चलेंगे तो वे भ्रष्टाचार काटेंगे, वे शाप को काटेंगे और दूसरों पर भी शाप लाएंगे। इसलिए पौलुस, जो विश्वास से जीने के बारे में सब कुछ जानता है, वह हमें देह के अनुसार चलने की राय नहीं देता। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। पौलुस परमेश्वर का सेवक था जो आत्मा में चलता था। जब लोग बाइबल में देखते हैं कि वह आत्मा में चला था तो कुछ लोग सोचेंगे कि पवित्र आत्मा ने वह करने के लिए उसे सीधे आदेश दिया होगा, जैसे कि पौलुस बाई ओर जा और किसी को मिल, या तुझे उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। लेकिन यह सच नहीं है। वह दूसरों को सुसमाचार प्रचार करके और उनकी आत्माओं को बचाने के लिए मदद करने के द्वारा आत्मा में चला था। जो लोग आत्मा में चलते थे उनके साथ जुड़कर भी पौलुस ने प्रभु की सेवा की थी। मसीहियों में ऐसे लोग भी हैं जो आत्मा में नहीं चलते लेकिन देह की वासना के अनुसार चलते हैं। वे पौलुस का स्वागत नहीं करते लेकिन उसका विरोध करते हैं और उसे बदनाम करते हैं। पौलुस कहता है कि जो लोग यीशु मसीह के चेले के विरोध में लड़ते हैं और उनको बदनाम करते हैं, उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि आप आत्मा में चलना चाहते हैं तो आपको सुसमाचार के अनुसार जीवन पड़ेगा। खतना किए हुए लोगों ने पौलुस को सताया। गलातियों अध्याय 5:11 में लिखा है, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। खतना किए हुए लोग वे थे जो खतना करने की हिमायत करते थे। वे कहते थे, यदि कोई यीशु में विश्वास के द्वारा नया जन्म पाता है तो उसे खतना करवाना चाहिए। यदि वह शारीरिक खतना नहीं करवाता तो वह परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि वह उसके पीछे पड़ गए। पौलुस विश्वास करता था कि छुटकारा और अनंत जीवन की आशीष केवल यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर के उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। उसने यही प्रचार किया। लोगों को धर्मी बनाने वाला विश्वास सत्य को सिखाने और उसके प्रचार करने के द्वारा आता है। पौलुस ने पानी और आत्मा के सत्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। वह विश्वास करता था कि जो लोग सत्य को जानते हैं वे आत्मा में चलते हैं और इसलिए खतना करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने यही प्रचार किया, लेकिन खतना किए हुए लोग विश्वास करते थे। व्यक्ति के उद्धार में विश्वास के लिए खतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि परमेश्वर के द्वारा दिए गए सुसमाचार के अलावा और कोई सुसमाचार नहीं है, और इसलिए हमें इसमें कुछ मिला नहीं है और कुछ घटाना भी नहीं है। जब पौलुस आत्मा में चलता था, तब वह अपने यहूदी अनुयायियों के द्वारा नकारा गया और सता गया। आगे लिखा है, अगर हम गलतियों की पत्री अध्याय 6 वचन 12 से 15 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। क्योंकि खतना करवाने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। और पौलुस ने खतना किए हुए लोगों से कहा, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। जो लोग देह की वासनाओं के अनुसार चलते हैं उन्हें पौलुस धिक्कारता है। वे देह के वासना के कार्य के अनुसार चलते हैं और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पौलुस उनके साथ रिश्ता खत्म कर देता है। पौलुस ने कहा, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। जगत के सारे पापों को उठाने के लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और पौलुस और प्रभु ने बुलाए हुए सारे लोगों को बचाने के लिए वह क्रूस पर मर गया। पौलुस ने कहा, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। लेकिन न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। पौलुस जो संसार के लिए मरा हुआ था, लेकिन मसीह के द्वारा फिर से जिलाया गया। वास्तव में हम मसीह में मरे हुए हैं, लेकिन कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। हमें इस बात पर विश्वास करना ही चाहिए। यदि हमें इस सत्य पर विश्वास नहीं है तो हम देह की वासना और हमारे परिवारों से बंधे हुए हैं, और यह हमें प्रभु के साथ चलने से रोकता है। हमारी देह इतनी कमजोर है कि हमारा परिवार भी हमें उसके साथ चलने में मदद नहीं कर सकता। केवल प्रभु हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब हम संसार के लिए क्रूस पर चढ़ गए हैं। कैसे कोई मरा हुआ मनुष्य संसार के लोगों को सांसारिक बातों में मदद कर सकता है? जो लोग इस संसार में मर चुके हैं उनके पास कोई सांसारिक चीजें नहीं होती। यीशु पुनरुत्थित हुआ था। उसका पुनरुत्थान हमें आत्मिक जीवन में नया जन्म पाने की अनुमति देता है। यहां हमारे पास नया कार्य, नया परिवार, नई आशा है। हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। हम स्वर्ग के सैनिक हैं, इसलिए परमेश्वर के वचनों को प्रचार करना हमारी जिम्मेदारी है। पौलुस अंगीकार करता है कि वह सांसारिक रीति से नहीं, लेकिन आत्मिक तरीके से दूसरों को उद्धार पाने में मदद करने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि वह पहले मर चुका है और यीशु मसीह के द्वारा फिर से जिलाया गया है। आइए ऐसे व्यक्ति बने जो ऐसी ही गवाही देने वाला हो। पौलुस गलातियों की पत्री अध्याय 6 वचन 17 और 18 में कहता है, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। पौलुस ने प्रभु यीशु के दाग लिए थे। उसने आत्मा में चलने के लिए प्रभु के लिए अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं की। जब वह धीरे धीरे अपने देखने की क्षमता खो रहा था, तब वह लिख भी नहीं सकता था। इसलिए जब वह परमेश्वर के वचन बोल रहा था, तब उसकी कुछ पत्रियां उसके साथी तिरतियुस ने लिखी थी। भले ही वह शारीरिक रूप से कमजोर था, फिर भी वह आत्मा में चला और उसके द्वारा वो खुश था। और उसने कहा, दूसरा कुरिन्थियों पत्र अध्याय 4 वचन 16, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता है। पौलुस हमें राय देता है कि हम आत्मा में चलने वाले नम्र व्यक्ति बने। उसने ऐसा भी कहा है, आत्मा में चलने का मतलब है सुसमाचार के लिए जीना। आपको और मुझे यह बात याद रखने की जरूरत है कि आत्मा में चलने का मतलब क्या है। हमें सुसमाचार के लिए जीने की बजाय नाश होने वाली चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आइए हमारे बाकी के जीवन में विश्वास से आत्मा में चले। अब पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने से सच्चा आत्मा हमारे हृदयों में है। यदि हम सुसमाचार के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही परमेश्वर उत्तर देगा। आत्मा के फल देने का मतलब है कि आत्मा में चलना और आत्मा को छुड़ाना। जब हम आत्मा में चलते हैं और सुसमाचार के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप भी पवित्र आत्मा के फल दे सकते हैं, जैसे कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा, कृपा का प्रयोग करना होगा और खोए हुए लोगों के लिए भलाई करनी होगी। पवित्र आत्मा के फल उनके जीवन में आते हैं जो खोए हुए लोगों को पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करने के लिए भलाई करने और सुसमाचार का प्रचार करते हैं और उन्हें बचाते हैं। इसी के द्वारा आत्मा के फल पाए जा सकते हैं और आत्मा में चला जा सकता है।